ये रेडियो नेपाल है। अब रमिता यादव से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। चुनाव, सुशासन और न्यायिक जांच सरकार की मुख्य जिम्मेदारी होने की बात पर नागरिक अगुवाओं ने दिया जोर। जेएनजी प्रदर्शन के दौरान अपराधी समूहों द्वारा लूटे गए सामान बेचने लाए जा सकते हैं, इसलिए बिना बिल का सामान न खरीदने की पुलिस ने की सभी से अपील। राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड कक्षा 12वीं की पूरक परीक्षा 7 और 8 आश्विन को करेगा आयोजित। और गजा में इसराइल के हमले रोकने के लिए प्रमुख सहायता समूहों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील। अब समाचार विस्तार से। नागरिक क्षेत्र के अगुवा और बुद्धिजीवियों ने कहा है कि चुनाव, सुशासन और न्यायिक जांच सरकार की मुख्य जिम्मेदारी होनी चाहिए। उन्होंने जेएनजी समूह द्वारा शांतिपूर्ण तरीके से किए गए प्रदर्शनों में कैसे घुसपैठ हुई और जनधन की क्षति कैसे हुई, इसकी निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार को चुनाव के लिए राजनीतिक दलों और सरोकार वालों के साथ नियमित चर्चा और परामर्श कर चुनाव का माहौल बनाने के लिए आगे आना चाहिए और जोखिम में पड़ी शांति और सुरक्षा की स्थिति को सामान्य करने पर भी जोर दिया। सरकार ने जेएनजी प्रदर्शन के दौरान अपनी जान गंवाने वालों के सम्मान में आज झंडा आधा झुकाकर शोक जताया है। शहीदों के सम्मान में आज देश भर के सरकारी कार्यालयों, विदेशों में स्थित नेपाली दूतावासों और मिशनों में राष्ट्रीय झंडा आधा झुकाने का निर्णय सरकार ने किया है। भ्रष्टाचार नियंत्रण, सुशासन और पारदर्शिता की मांग को लेकर जेएनजी ने भाद्र 23 और 24 गति को राजधानी में प्रदर्शन किए थे। दो दिन के प्रदर्शनों के दौरान सुरक्षाकर्मियों और प्रदर्शनकारियों सहित कुल 72 लोगों की मौत हुई थी। साथ ही सरकारी और निजी संरचनाओं में आगजनी की घटनाएं भी हुई थी। जेएनजी प्रदर्शन के दौरान जान गंवाने वालों के सम्मान में राष्ट्रीय शोक मनाने के लिए आज देशभर सार्वजनिक छुट्टी दिया गया है। इसी तरह राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के मध्येश प्रदेश कार्यालय और महिला मानवाधिकार रक्षक संजाल की संयुक्त आयोजन में आज जनकपुर धाम में जेएनजी आंदोलन के दौरान शहादत देने वाले शहीदों की आत्मा की चीर शांति की कामना के साथ शांति रैली और दीप प्रज्वलन किया गया। वहीं नेपाल पत्रकार महासंघ, एनसीसी, एलुमनी एसोसिएशन नेपाल, जेएनजी युवा समूह सहित विभिन्न संघों और संस्थाओं ने जेएनजी आंदोलन के दौरान जान गंवाने वालों की स्मृति में दिवंगत आत्माओं की चीर शांति की कामना करते हुए माइती घर मंडला में अलग अलग दीप प्रज्वलन किए। जिला प्रहरी परिसर काठमांडू ने बिना बिल रसीद वाला सामान न खरीदने और न बेचने की सभी से अनुरोध किया है। परिसर ने आज एक सूचना जारी करते हुए कहा है कि जेएनजी के प्रदर्शन के दौरान आपराधिक समूहों द्वारा लूटे गए गहने सोने चांदी की दुकानों पर बेचने के लिए लाए जा सकते हैं, इसलिए बिल के बिना सोने चांदी के गहने न खरीदने का अनुरोध किया गया है। गत भाद्र 23 और 24 गते को जेएनजी द्वारा आह्वान किए गए प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों द्वारा काठमांडू के विभिन्न स्थानों पर स्थित सरकारी कार्यालयों, बैंक, वित्तीय संस्थानों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों के साथ साथ निजी संपत्तियों में भी आगजनी और तोड़फोड़ की गई तथा बहुमूल्य गहने और सामान चोरी लूटपाट कर ले जाते पाए जाने के कारण बिना रसीद खरीद न करने का अनुरोध किया गया है। ये जानकारी जिला प्रहरी परिसर काठमांडू के प्रवक्ता एवं एसपी अपील राज बोहरा ने दी। इसी तरह परिसर ने यह भी अनुरोध किया है कि यदि ऐसे सामान प्राप्त हो तो पुलिस कंट्रोल नंबर 100, जिला प्रहरी परिसर काठमांडू के संपर्क नंबर 9851283012 और नजदीकी पुलिस कार्यालय में इस विषय की जानकारी दे सकते हैं। ऊर्जा, जल स्रोत तथा सिंचाई, भौतिक योजना तथा यातायात और शहरी विकास मंत्री कुलमान घिसिंग ने जेएनजी प्रदर्शन के दौरान सिंहदरबार परिसर में जलाए गए वाहनों को अन्यत्र ले जाकर प्रबंधन करने का निर्देश दिया है। जले हुए वाहनों के कारण सिंहदरबार परिसर बदसूरत दिख रहा था, इसलिए उन्हें वहां से हटाकर अन्यत्र ले जाकर प्रबंधन करने का आदेश मंत्री घिसिंग के सचिवालय ने आज जारी किया है। उन्होंने विनाश से हम उठे का संदेश देने के लिए केवल सामान्य आगजनी वाले वाहनों के बाहरी हिस्से में रंग रोगन करने, मंत्रालय और कार्यालय परिसर में आगजनी से क्षतिग्रस्त वाहनों को तुरंत हटाने और क्षति का मूल्यांकन तत्काल करने के काम में जुटने का निर्देश दिया। मंत्री घी सिंह ने स्पष्ट किया कि हमारी संरचना हम स्वयं बनाए अभियान के माध्यम से सरकार देश और विदेश में रहने वाले नेपालियों से सहयोग संग्रह कर पुनर्निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। आप रेडियो नेपाल से हिंदी समाचार सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
ए छोरा, के छ हाल खबर? पढाइ कस्तो चल्दैछ?
सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा?
यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ल, तेरो आमासँग कुरा गर।
पर्दैन पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ?
किन टेन्सन लिन्छस् बाबु? हामी जस्ताको लागि एनटिसी को कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा।
ल त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त।
सेवा सुचारु गर्नका लागि *1415 # डायल गर्नुहोस्।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। गत भाद्र 23 और 24 को जेएनजी प्रदर्शन के दौरान उस अवसर का फायदा उठाकर विभिन्न जेलों से फरार हुए कैदी अब बड़ी संख्या में जेल लौटने लगे हैं। जेलों से भागे हुए अधिकांश कैदियों को सुरक्षा बलों ने गिरफ्तार कर जेल वापस भेजा है, जबकि कुछ स्वयं ही जेल लौट आए हैं। जेएनजी आंदोलन के दौरान हेटौड़ा स्थित विभिन्न सरकारी कार्यालयों और मंत्रालयों से चोरी और लूटपाट किए गए सामान की तलाश में मकवानपुर पुलिस सक्रिय हो गई है। हालात सामान्य होने के बाद भाद्र 24 को आंदोलन के दौरान विभिन्न सरकारी कार्यालयों और मंत्रालयों से चोरी और लूटे गए सामान की खोज के लिए पुलिस जुट गई है। सीसीटीवी फुटेज और सोशल मीडिया पर दिख रहे दृश्यों के आधार पर पुलिस ने विभिन्न सरकारी कार्यालयों से चोरी और लूटे गए सामान की तलाश शुरू की है। राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड ने कक्षा 12वीं की पूरक परीक्षा आश्विन 7 और 8 को आयोजित करने का निर्णय किया है। इससे पहले बोर्ड द्वारा भाद्र 28 और 29 गति को परीक्षा आयोजित करने की सूची जारी की गई थी, लेकिन देश की वर्तमान स्थिति को देखते हुए परीक्षा कार्यक्रम को संशोधन कर नई तिथि की घोषणा की गई है। बोर्ड ने यह भी बताया है कि परीक्षा केन्द्र पहले ही निर्धारित किए जा चुके हैं। आज विश्वकर्मा की पूजा अर्चना करके वास्तु दिवस एवं विश्वकर्मा पूजा मनाई गई है। विभिन्न कारखानों और औद्योगिक प्रतिष्ठानों में विश्वकर्मा भगवान की मूर्ति या तस्वीर पर विधिपूर्वक पूजा अर्चना की जाती है। कारखानों को विशेष रूप से सजाया जाता है और श्रमिकों को शामिल करके ये दिवस मनाया जाता है। मौसम विभाग ने बताया है कि अब औसतन 15 दिनों में मानसून के विदा होने का समय है, लेकिन अभी भी ये सक्रिय हो गया है। मौसम पूर्वानुमान महाशाखा के अनुसार मानसून की निम्न दाब रेखा अभी सामान्य स्थान के आसपास स्थित है, साथ ही अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से नवीयुक्त हवा का प्रभाव बना हुआ है, जिसके कारण मानसून पुनः सक्रिय हो गया है। महाशाखा के मौसमविद रोजन लामिछाने ने बताया कि आमतौर पर 2 अक्टूबर को मानसून विदा हो जाता है, लेकिन इस साल ये सामान्य स्थिति पर ही समाप्त होगा या नहीं ये अभी कहना संभव नहीं है। सप्तकोशी नदी में जलस्तर बढ़ने के बाद कोशी बैरेज के 32 दरवाजे खोले गए हैं। आज शाम 6 बजे किए गए जलस्तर मापन में कोशी बैरेज पर पानी का प्रभाव ने प्रति सेकंड 223,175 क्यूसेक को स्तर पार करने के बाद 32 दरवाजे खोले गए हैं। ये जानकारी जिला पुलिस कार्यालय के पुलिस प्रवक्ता योगराज खतिवड़ा ने दी। कोशी बैरेज पर पानी का प्रभाव जब 150,000 क्यूसेक से अधिक हो जाता है तो खतरे का संकेत देने के लिए लाल बत्ती जलाई जाती है। बता दें कि पहाड़ी इलाकों में हो रही बारिश के कारण जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। गजा पट्टी में इजराइल की सैन्य कार्रवाई के कारण मानवीय संकट गहराता जा रहा है। प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सहायता समूहों जिनमें संयुक्त राष्ट्र एजेंसियां, रेड क्रॉस और अन्य मानवीय संगठन शामिल हैं, उनका तत्काल युद्ध विराम और इजराइल के हमले रोकने की मांग करते हुए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से हस्तक्षेप की अपील की है। गजा में बुनियादी ढांचा ध्वस्त, अस्पतालों की स्थिति दयनीय और भोजन पानी दवाइयों की भारी कमी है। हजारों नागरिक हताहत हुए हैं जिनमें बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र और अन्य एजेंसियों ने चेतावनी दी है कि यदि हमले तुरंत नहीं रुके तो और अधिक जाने जाएंगी और मानवीय तबाही बढ़ेगी। गाजा में सहायता कार्यों में बाधा उत्पन्न हो रही है और राहत कर्मी भी खतरे में हैं। कई देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने हिंसा की निंदा की है और शांति वार्ता का आह्वान किया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में युद्ध विराम के प्रस्ताव पर चर्चा जारी है, लेकिन अब तक ठोस नतीजा नहीं निकल सका है। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। चुनाव सुशासन और न्यायिक जांच सरकार की मुख्य जिम्मेदारी होने की बात पर नागरिक अगुवाओं ने दिया जोर। जेएनजी प्रदर्शन के दौरान अपराधी समूहों द्वारा लूटे गए सामान बेचने लाए जा सकते हैं, इसलिए बिना बिल का सामान न खरीदने की पुलिस ने की सभी से अपील। राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड कक्षा 12वीं की पूरक परीक्षा 7 और 8 आश्विन को करेगा आयोजित, और गजा में इजराइल के हमले रोकने के लिए प्रमुख सहायता समूहों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिन्दी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।